आजकल ये गजाइत की कमी, माल न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा हो रहा है और पूरी दुनिया में बहुत बताया जा रहा है कि भूख से लोग जो है ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं। माल न्यूट्रिशन की मैं चाहूँगी कि आप उसका तारुफ कराएं, क्योंकि आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि जिनके पास खाना पीना नहीं है सिर्फ उनको गजाइत की कमी हो जाती है, और जिनके पास इतनी पैसा है वो खा भी सकते हैं, उनको नहीं होती है। तो इसके बारे में कुछ बताएं।
जी बहुत शुक्रिया। माल न्यूट्रिशन या इसको हम गज़ाइत की कमी कहते हैं, और इसको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। माल न्यूट्रिशन एक जर्नल टर्म है, और इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि जो गज़ाइत होती है या जो न्यूट्रिएंट्स होती है उसका जो लेवल होता है इंसान के जिस्म के अंदर, वो या तो हद से ज़्यादा कम हो रहा है या हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दोनों सूरतों में हम इसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो गज़ाइत है और जो न्यूट्रिएंट्स है उस पर आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये अगर कम हो रहे हैं इंसान के जिस्म के अंदर तो इसके अलग जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो है, और मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी बीमारियाँ रिपोर्ट हो रही है इंसान के जिस्म के, इसके गहरे असरात है। इसके अलावा अगर हम इस तरह की खुराक ले रहे हैं जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स है या जो गज़ाइत है वो इसमें हद से ज़्यादा है, तो
अच्छा,
ये ओवर न्यूट्रिशन है और ये भी माल न्यूट्रिशन के अंदर आ रही है। और इसकी भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, जिस तरह ओबिसिटी हो गई और फिर वेट गेन हो गया, ये इससे रिलेटेड चीज़ है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्टली अंडर न्यूट्रिशन पे है,
जी
और अंडर न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि इंसान के जिस्म के अंदर जो गज़ाइत की कमी होती है वो क्यों होती
जी
है, वो किस तरीके से होती है। तो इसमें ये एक अहम बात है कि जो खुराक हम खाते हैं
जी
वो किस तरह का खुराक हम खाते हैं, और इस तरह की खुराक जिसमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो न्यूट्रिएंट्स है, और न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात कर ले तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं,
जी
एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ये चीज़ें शामिल है और ये भी खुराक की बुनियादी अज्जा है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स, विटामिन, ये चीज़ें शामिल है,
जी
ये भी हमें खुराक के ज़रिए मिलती है। तो गज़ाइत की कमी में दोनों किस्म की ये जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल रही है, खुराक के थ्रू हमें मिल रही है या जो दूसरी सप्लीमेंट्स के थ्रू हमें मिल रही है, सब्जियों के थ्रू हमें मिल रही है, दोनों की कमी हो जाती है, और इसके जो असरात है वो पूरे जिस्म पे पड़ना शुरू हो जाती है। इससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां है जो इंसान के जिस्म के अंदर नमूदार हो जाती है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात
जी
है, और डिटेल में हम इस पर बात करेंगे।
अच्छा, आपने कहा कि हमारे जिसमें मैक्रो या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो फिर ये कमी क्यों हो जाती है? क्या हम वो चीज़ें खाते नहीं हैं इसलिए हो जाती है, या फिर हम वो चीज़ें ले रहे हैं और हमारा जिस्म जो है उस चीज़ को, हमारा बदन जो है उसे अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर रहा है?
दोनों सूरतें हैं। एक तो ये है कि इस तरह का एक खुराक हम ले रहे हैं जो बैलेंस डाइट नहीं है और इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है। हम मिसाल के तौर पर इस तरह के फूड ले रहे हैं जिसमें एक तरफ तो कुछ न्यूट्रिएंट्स शामिल है लेकिन एक लिहाज से वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट फूड है, तो हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे लेकिन उस हिसाब से दूसरे न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि हमारे जिस्म के अंदर इस तरह कोई कॉम्प्लिकेशंस है या इस तरह कोई पेचीदगी है जिसकी वजह से जो खुराक की न्यूट्रिएंट्स है उसकी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसकी प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, और इस न्यूट्रिएंट और इन न्यूट्रिएंट की वजह से जितनी भी हमें एनर्जी मिलती है, जितनी भी हमें तवानाई मिलती है, वो हमें नहीं मिल रही। तो दोनों सूरतों में ये पॉसिबल है, और इसकी बुनियादी वजूहात में ये भी शामिल है कि खुराक तो हमें मिल रही है लेकिन क्वालिटी फूड नहीं मिल रही, और वही खुराक हम खा रहे हैं लेकिन वही खुराक जो हमें गज़ाइत फराहम कर रही है, हमारे जिस्म को जो नशोनुमा देती है वो हमें नहीं दे रही, तो ये दोनों इसमें शामिल है।
क्वालिटी फूड का आपने कहा, क्या मतलब
जी
आपका क्वालिटी फूड होना चाहिए?
क्वालिटी फूड में ये है कि जो फूड हम खाते हैं वो हर लिहाज से एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। जो मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ़ किस्म की जो फूड न्यूट्रिएंट्स है, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की इस तरह की खुराक की चीज़ें हैं जो अगर हम प्रॉपर प्रोपोर्शंस में, प्रॉपर मिकदार में खा लें डेली बेसिस पे, या एक पूरे हफ्ते का अगर हमारे पास शेड्यूल हो और उसी हिसाब से हम वही न्यूट्रिएंट्स लें, हमारे खुराक के अंदर वो शामिल हो, तो इसमें से ये बुनियादी बात है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो, दोनों हमें मिलेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स आ रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन रिच सोर्सेज आ रहे हैं, इसमें फैट रिच सोर्सेज आ रहे हैं, विटामिन रिच सोर्स आ रहे हैं, फ्रूट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर हम इसको मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस में एक मुनासिब तनासुब के साथ हम ले रहे हैं तो इस सूरत में बिल्कुल जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो नहीं होंगी। और जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है, जितनी भी अज्जाए खुराक की, वो हमें हर एक मिलेगा अपने जो इसके रिक्वायरमेंट्स है, उसका जो मकदार है, उस हिसाब से हम मिलेंगे, तो उसको हम क्वालिटी फूड कहते हैं।
हम गज़ाइत पे बात कर रहे हैं कि कमी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन जो लोगों को हो जाता है, तो हमने बात की कि किस वजह से हो जाती है और बल्कि वजूहात पे हम उस तरह से हमने रोशनी नहीं डाली है, वजूहात के बारे में बात करते हैं, बताइए।
माल न्यूट्रिशन की या अंडर न्यूट्रिशन की या गज़ाइत की कमी की मुख्तलिफ किस्म की वजूहात है। इसमें सबसे जो बड़ी वजह है वो गुर्बत है, क्योंकि आजकल जितनी भी मुल्कों में ये माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन की केसेस रिपोर्ट हो रही है वो गरीब ममालिक है, जिस तरह ये अफ्रीका के ममालिक हो गई या एशियन कंट्रीज़ हो गई, इस तरह के मुल्कों में गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है और लोग इस काबिल नहीं होते कि वो अपने लिए क्वालिटी फूड्स ख़रीद ले, या उनको जो इनका फाइनेंशियल स्टेटस होता है या जो इनका इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो इनको इस हद तक नहीं लेके जाता कि वो अपने लिए क्वालिटी फूड्स ख़रीद ले और वो क्वालिटी फूड का है। तो इसमें तो एक बुनियादी वजह गुर्बत है। इसके अलावा मुख्तलिफ इसके और भी वजूहात है, जिस तरह ये रिलीजियस बिलीफ हो गई, कुछ लोग मुख्तलिफ किस्म की फूड्स रिलीजियस बिलीफ की वजह से नहीं खाती, इसकी वजह से भी कुछ मसले आ जाते हैं और गज़ाइत की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर हम बच्चों की बात कर ले, और अक्सर जो बच्चे होते हैं वो गज़ाइत की कमी का शिकार हो जाते हैं
क्योंकि वो माँ का दूध नहीं पीते
जी, तो इसमें ये बात है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, या तो वो उनको दूध ठीक तरीके से नहीं मिलता, या उनको इस तरह कोई इबनॉर्मेलिटीज़ होती है कि वो जो माँ का दूध ठीक तरीके से वो नहीं खा सकते, तो ये भी इसकी वजूहत में शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की इस तरह कुछ बिलीव्स है, कुछ अकायद है कि लोग कुछ फूड्स खाते हैं, कुछ नहीं खाते, कुछ लोग ने अपने तरफ से कुछ इस तरह की बिलीव्स बनाए होते हैं कि ये फूड्स हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे कल्चर के लिए ठीक नहीं है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की वजूहात है और ये सारी इसके शामिल है, इसके गज़ाइत की कमी के।
लेकिन हम उन लोगों के बारे में बात करना चाहेंगे कि जिनको पैसे की, अब देखिए जो लोग गरीब मुल्कों में हैं, अब उनकी उनका इलाज पैसा है, यानी पैसा आएगा, अगर उन्हें खाना मिलेगा तो वो चीज़ हट जाएगी। हम उन लोगों के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि जिनके पास पैसा है और कोई उनके इस टाइप के बिलीव्स भी नहीं है, यानी उनके सामने सारा खाना रखा हुआ है, लेकिन वो एक चीज जो है खाते हैं, उसके बारे में हमें बताएं कि यानी जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मसलन हम ये वाली तरकारी नहीं खाएंगे, हम ये वाली सब्ज़ी नहीं खाएंगे, खुसूसन बच्चों के साथ होता है कि बचपन से उन्हें जो है कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बारे में हमें बताइए कि क्या चीज़, और खुसूसन इन चीज़ों में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, जैसे आपने बताया कि माँ का दूध होता है।
इसमें एक बुनियादी बात यह है कि इस तरह के जो लोग, इनका जो ये जहन होता है कि मैंने ये चीज़ खानी है और मैंने ये नहीं खानी है,
हमें मज़े की नहीं लगती
जी, उनके पास फूड की अवेलेबिलिटी होती है, खुराक उनके पास होता है और क्वालिटी फूड होता है, लेकिन वो अपने बॉडी के हिसाब से वो कहते हैं कि हमने ये चीज़ नहीं खानी क्योंकि इसकी वजह से हमारी जो वेट गेन है ये हो जाएगा और ओबीज हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो अक्सर ख़ुद को थिन स्लिम रखना चाहते हैं, इसलिए वो अक्सर कुछ चीज़ों को वो खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो हमारे सेहत के लिए नफा बख्श है, हमारे लिए बहुत मुफीद चीज़ें हैं, वो मिस कर जाती है और इंटेंशनली मिस कर जाती है। इस तरह की कंडीशंस को हम एनोरेक्सिया कहते हैं, और ये जो लोग होते हैं ये इंटेंशनली इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो ये इस वजह से भी लोग मुख्तलिफ किस्म की जो गज़ाइत की कमी है या जो हमारे पास अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे लिए फ़ायदे की है वो महरूम हो जाते हैं, और वो भी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो ये भी इसकी एक वजह है कि लोगों के पास खुराक मौजूद है, गुर्बत नहीं है या दूसरी बिलीव्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग फूड्स नहीं खा रहे, तो ये भी इसकी एक है वजह हो सकती है कि लोग अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से या अपनी बॉडी के हिसाब से इस तरह कुछ फूड्स खाते हैं कि उनके जहन में ये होता है कि इस तरह की फूड से हमें ओबीज नहीं होंगे और हम ओवरवेट नहीं होंगे, तो इनकी अपनी पर्सनल और अपनी बॉडी के हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं, तो ये भी इसमें शामिल है।
अच्छा, आपने एनोरेक्सिया की बात की, क्या ऐसा होता है कि जैसे आप जो एक चीज़ नहीं ले रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपने डाइटिंग की, आपने बहुत साल तक वो चीज़ नहीं खाई, अगर अब आपको डॉक्टर ने कहा है कि नहीं तुम्हें ये चीज़ें खानी चाहिए, अब उनके अकल में अकल आई कि नहीं मेरी तो हड्डियाँ दिख रही हैं, मैं तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा हूँ या अच्छी नहीं लग रही हूँ, तो अब अगर वो खाते हैं तो क्या ऐसा होता है कि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, जो डाइजेशन हो, वो जो जज्ब करता हो वो न्यूट्रिएंट्स, वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने इतने ज़माने से वो चीज़ें नहीं खाई हैं, तो अब उनका मैदा जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको कबूल नहीं करेगा।
इस तरह तो नहीं है कि एक चीज़ जो काफ़ी अरसे से एक बंदा नहीं खा रहा और कुछ अरसे बाद वो खा ले तो इनका मैदा वो एडजस्ट नहीं करेगा, इस तरह कोई सूरत तो नहीं है। लेकिन ये है कि अगर एक लंबे अरसे के लिए कोई एक चीज़ नहीं खा रहा तो कुछ इस तरह कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो इनका जो एडाप्टिबिलिटी होती है या इनका इम्यून सिस्टम होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें है कि सालों तक वो नहीं ले रहा और फिर वो ले रहा है, तो इसमें मेरे हिसाब से फूड एलर्जी के कुछ केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि जो फूड्स वो बिल्कुल नहीं खा रहा हो, बिल्कुल उनके लिए अनजान हो गई है वो फूड्स, और वो एकदम वो खाना शुरू हो जाए वो फूड्स, इसमें फूड एलर्जी के कुछ चांसेस हो सकते हैं या इनडाइजेशन के कुछ चांसेस हो सकते हैं, कि वक्ती तौर पर जो इनका निज़ाम इन्हज़ाम होता है या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वक्ती तौर पर उसमें कुछ मसले आ जाए और वो प्रॉपर तरीके से उसको एब्जॉर्ब ना कर ले। लेकिन अगर वो तारुली और कंटिन्यूसली वो चीज़ें वो खा रहा है या वो खा रही है, तो इस हिसाब से इनका जो सिस्टम होता है, इनकी जो फिजियोलॉजी होती है, वो अडॉप्ट हो जाती है इनके साथ, और फिर वक्त के साथ साथ वो चीज़ें इनको फ़ायदा देती है, कुछ इनके लिए कुछ भी नुकसानदेह है और इस तरह कोई मसले नहीं क्रिएट कर सकती।
अच्छा, अलामात बताएं, कैसे पता चले कि एक शख्स जो है वो उसको माल न्यूट्रिशन का या गज़ाइत की कमी का जो है शिकार हो गया है?
इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात है, और जो लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, खसूसन जो बच्चे होते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात है। मिसाल के तौर पर इनकी जो पूरी जिस्म होते हैं, अगर हम बॉडी के हिसाब से देख लें तो इनका जिस्म जो होता है वो बिल्कुल तिन स्लिम हो जाता है, बिल्कुल में हड्डियाँ नमदार हो जाती है, और इसके एक और ये बुनियादी अलामत है कि इनकी जो पेट होता है वो बिल्कुल नमदार होना शुरू हो जाती है, इसको हम बल्गी बिले कहते हैं या जो बाहर निकल रही होती है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ इसके ऑर्गन्स है उस हिसाब से इसकी अलामत जो होती है वो नमदार होना शुरू हो जाती है। इसकी जो आंखें होती है, इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट पेशेंट्स होते हैं या गज़ाइयत की कमी का शिकार जो लोग होते हैं, इनकी जो आंखें होती है वो संकन आइज होती है, बिल्कुल अंदर गहरी चिपकी होती है, और इनका जो कलर होता है वो मोस्टली जर्द होता है। इसके अलावा इनकी जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और ये भी इसमें शामिल है कि जो लोग इस तरह की बीमारी का शिकार होते हैं, इस पर अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, तो अक्सर ये जो लोग होते हैं इसको क्रॉनिक इलनेस कहते हैं, हर वक्त ये बीमार रहते हैं और हर वक्त ये लागर और कमज़ोर रहते हैं। इसके अलावा जो इनके जो बाल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के बाल होते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं, या इनकी जो स्ट्रक्चर होती है या इनका जो कलर होता है वो भी चेंज होता है। इसमें दूसरी भी बहुत सारे अलामत शामिल है, जिस तरह इनकी जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं या जो मुख्तलिफ किस्म के हो जाते हैं। और इसके अलावा जो ये पेशेंट्स होते हैं, इनका जो वेट होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल वो वेट लॉस हो जाता है, और बिल्कुल कमज़ोर लगते हैं, लागर से लगते हैं, और हर वक्त इनको इस तरह की हम सिचुएशन देखते हैं कि ये कुछ बीमारी का शिकार है या इनको कुछ मसला है, और इनकी जो डिस्टर्बेंस पूरी ज़िंदगी में इनकी डिस्टर्बेंस होती है, बॉडी जो फिजियोलॉजी होती है वो चेंज होती है, इनका जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो चेंज होता है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की इसकी अलामत है।
आपने प्रोग्राम जब हमने शुरू किया था तो आप बता रहे थे कि सिर्फ कमी की वजह से नहीं होता है, अगर हम किसी चीज़ की ज़्यादती भी कर देते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खाने लगते हैं उससे भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
इसमें ये बात बहुत आम है कि कुछ लोग एक ख़ास किस्म की खुराक खाते हैं और जो बाकी फूड्स होते हैं वो इसको बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं, तो इसकी भी काफ़ी गहरे असरात होते हैं हमारे जिस्म पे, और मुख्तलिफ किस्म की इसी कॉम्प्लिकेशंस बनती है। जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं और इनका ये बिलीव होता है कि हम सिर्फ सब्ज़ियाँ खाएँगे, तो एक लिहाज से तो ये बात दुरुस्त है कि जो सब्ज़ियों के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर या फ्रूट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो तो उनको मिलेंगे, लेकिन जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है, जिस तरह प्रोटीन हो गए, जिस तरह फैट्स हो गए, ये जो दूसरी फूड ग्रुप्स है उसमें शामिल है, और वो अगर वो नहीं खा रहे तो उस लिहाज से वो डिफिशेंट हो गए, और जो बीमारियाँ उस वजह से जन्म लेती है इंसान के जिस्म के अंदर वो इस वजह से बनेंगी। या अगर वो लोग मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीनेशियस फूड खा रहे हैं या इस तरह की फूड्स खा रहे हैं, इसमें प्रोटीन रिच सोर्सेज है, जिस तरह मुसलसल गोश्त खा रहा है या इस तरह की जो रोगनी चीज़ें खा रहे हैं या फूड रिच फैट रिच फूड खा रहे हैं, तो इस हिसाब से तो इनको फैट्स मिलेंगे, इस हिसाब से इनको प्रोटीन्स मिलेंगे, लेकिन जो सब्जियों के अंदर गज़ाइत है, जो मिनरल्स है, जो विटामिन्स है फ्रूट के अंदर, वो उनको नहीं मिलेंगे। तो दोनों के अंदर एक बैलेंस रखना चाहिए, और ये जो बैलेंस है ये हमारे जिस्म के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और एक इसमें ये बात शामिल है कि जो लोग सिर्फ सब्जियों पर डिपेंड करते हैं, तो इस हिसाब से जो मिनरल्स होते हैं या जो सोडियम कैल्शियम या जो दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिएंट्स है, ये इनको मिलेंगे। तो इसमें एक ये भी चांस हो सकती है कि जो इसकी एक लेवल होता है इंसान के जिस्म के लिए, जो एक मुफीद लेवल होता है, अगर हम मुसलसल सब्ज़ियाँ खाएँ और हम जो प्रोटीनिशियस है या फैट रिच सोर्सेज है उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर ले, तो इस हिसाब से जो हमारे जिस्म के अंदर ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म लेती है जो इन्हीं सब्ज़ियों की वजह से या इनकी वजह से होती है। मसलन जो रीनल सिस्टम है हमारा, जिस तरह गुर्दों की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ है, वो भी मुख्तलिफ ये जो मिनरल्स है इसकी जो लेवल है वो काफ़ी हद तक असरअंदाज होती है हमारे जो रीनल सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें कि कुछ लोग सिर्फ मीट पे या
जी
गोश्त पे वो करते हैं और बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते, तो इस हिसाब से तो इनको ये प्रोटीन और ये चीज़ें मिल रही है लेकिन दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन ये अगर मुसलसल इनका ये फूड पैटर्न है और ये फूड हैबिट है कि वो बिल्कुल ये गोश्त खा रहा है या जो दूसरी पेटी फूड्स खा रहे
जी
हैं, तो इनका जो प्रोटीन लेवल है इसको हम हाइपर प्रोटीनीमिया कहते हैं, ये बढ़ रहा है प्रोटीन लेवल। तो इस हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट्स, इस हिसाब से अगर ये बढ़ रहे हैं इंसान के जिस्म के अंदर, उनका जो रिकमेंडेड लेवल है इससे ये एक्सीड कर रहा है, तो इस लिहाज से ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद नहीं है और इस वजह से मसले बन सकते हैं जिस्म के अंदर।
अच्छा, हमें बात अब करनी है इलाज की और बचाव की। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए क्या किया जाए?
बचाव या प्रिवेंशन में बुनियादी बात यह है कि हमारे पास जो फूड्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की फूड टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है और जो डेवलप कंट्रीज़ है उसमें ये काफ़ी ने इस पर अमल किया है, और फूड टेक्नोलॉजी की वजह से जो फूड क्वालिटी है, जो फूड क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, और इस हिसाब से जो लोगों को फूड्स मिल रहे हैं वो प्रॉपर मिकदार में मिल रहे हैं। तो इसमें तो ये एक बात है कि जो हम फूड सिक्योरिटी हम इसको बोलते हैं कि जो लोगों को फूड्स नहीं मिल रहे, इस तरह की हम कोई पॉलिसी बनाए, इस तरह कोई स्ट्रेटजीज बनाए कि इस हिसाब से हमारे पास जो फूड्स होते हैं इसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़े और हमारे पास क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो भी बढ़े। तो ये जो मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज है ये भी इसकी प्रिवेंशन में शामिल है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्सिडाइज फूड्स होते हैं, क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं या जो पॉवर्टी की वजह से वो क्वालिटी फूड्स नहीं ख़रीद सकते, तो इसके लिए इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, और ये भी गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि सब्सिडाइज फूड्स हो और एक गरीब घराना जो होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं जो इसका एक्सेस होता है इस तरह की फूड्स के लिए, ये वो हम पॉसिबल बनाएं, तो ये भी एक इसके अंदर शामिल है। और दूसरी बात यह है कि जो अक्सर हमारी हैबिट्स होते हैं, हम जो अपने खुद साख्ता जो अकायद हमने बनाए होते हैं कि हम ये फूड खाने हैं, ये फूड नहीं खाने हो, तो इस हिसाब से हम महरूम हो जाते हैं न्यूट्रिएंट्स से। तो ये जो चीज़ें हैं इसको भी एक बिल्कुल कंसिडरेशन में नहीं लेना चाहिए, और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फूड्स होते हैं,
जी
सब्ज़ियाँ होती है, जो दूसरे किस्म के पल्सेस होते हैं, ये अगर हम प्रॉपर तरीके से खा लें तो ये बिल्कुल इस पे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, और जो गज़ाइयत की कमी होती है इससे
वो
हम
नहीं
काफ़ी हद तक
होगी।
दूर हो सकते हैं।
अच्छा, इलाज पे आ जाते हैं, इसका इलाज कैसे होगा?
ये जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की गज़ाइयत की कमी है, अगर इलाज की हम बात कर ले तो इसमें बुनियादी बात यह है कि जो हम फूड्स खाते हैं वो बैलेंस डाइट होना चाहिए,
खाना पीना अपना सही कर लिया।
हाँ मुतवाजन खुराक होना चाहिए, और मुतवाजन खुराक कौन सा खुराक होता है, तो ये एक ऐसा खुराक होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो न्यूट्रिएंट्स है, अगर वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सब शामिल हो, तो इसके लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की जो गोश होते हैं ये हमें एक प्रॉपर तरीके से खानी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास पल्सेस होते हैं, मुख्तलिफ़ बीन्स हो गई, लोबिया, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं,
दालें
दालें हो गई,
जी
ये भी एक रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, तो ये भी अगर हम पूरा खुराक में शामिल कर ले। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड हमारे पास अवेलेबल है, जो न्यूट्रिएंट्स रिच फूड्स होते हैं, जिस तरह जिंक, आयरन, ये चीज़ें इसमें शामिल होती है, तो ये जो फूड्स होते हैं, फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं, ये भी एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ इनर्जी होती है, और इससे अगर हम इसको खा लें तो ये हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की फूड सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल है और इसके ज़रिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं या जो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। फूड सप्लीमेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं वो शामिल होते हैं और इसी फूड सप्लीमेंट के ज़रिए हम खुराक में ये शामिल करते हैं और जो कमी हो जाती है इंसान के जिस्म के अंदर वो इसके ज़रिए हम ट्रीट कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं इनका कोई ख़ास वक्त होता है खाने का? मिसाल के तौर पर अगर हमने आम तौर पे कहा जाता है कि जैसे आपने खाना खाया तो उसी के साथ सप्लीमेंट ले ले तो ज़्यादा सही है या नहीं, खाने के पे खाली पेट भी लिया जा सकता है क्या?
ये इस तरह है कि इसका एक जो ओवर डोजिंग होता है ये भी ठीक नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में खाएँ या इसके लिए जो स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं ये दिन में एक ही बार यूज़ होने चाहिए, जो इसके टेबलेट्स होते हैं और मोस्टली ये नहारी मुँह नहीं लेकिन खाने के बाद एक प्रॉपर तरीके से एक जिस दिन के अंदर एक खास टाइम पे इसको हमने लेना चाहिए।
अच्छा, ये तो हमने बात की कि हम इस तरह से जो है खा पी के सही कर सकते हैं या न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए। अगर किसी में बहुत ज़्यादा हो गया हो माल न्यूट्रिशन तो क्या उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा? उसका क्या आप प्रोसीजर?
ये इसका एक एक्सट्रीम केस है अंडर न्यूट्रिशन का, इसको हम स्टार्वेशन कहते हैं और ये एक ऐसी सूरत है कि एक इंसान को सिर्फ सी खुराक ही नहीं मिल रही और इसको मुकम्मल तौर से खुराक से महरूम है। तो इसमें ये हो जाता है कि इसके हम प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए और जिस तरीके से हम एक हेल्थ पेशेंट को ट्रीट करते हैं या दूसरी बीमारियों से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स होते हैं उस हिसाब से हमने इसको ट्रीट करना होता है, क्योंकि इसको एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो इन्फ्यूजन्स होते हैं या जो फूड सप्लीमेंट्स होती है उसको फौरी ज़रूरत होती है। तो ये एक डिजीज़ कंडीशन हो गई जो स्टार्वेशन है और इसका पूरी इलाज ये बिल्कुल इसका एक हल है।
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैंने कोई सवाल ना पूछा और आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहते हो तो?
इसमें एक है कि जो खुराक हम लेते हैं और हमने शुरू में भी जिक्र किया कि हमने बिल्कुल एक ही फूड के साथ स्टिक नहीं रहना है और मुख्तलिफ किस्म की खुराक जो हमने खाने होती है तो हर एक खुराक की अपनी अहमियत है, हर एक न्यूट्रिएंट का एक अपनी अहमियत है। तो अगर हम खुराक को खा लें और प्रॉपर तरीके से खा लें तो इसके ज़रिए हमें इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें मिलेंगे इस हिसाब से।